আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ কি হামারি ইস রুহানি তরবিয়তি নশিস কা উনওয়ান হ্যায় সফর মজমউল বাহরাইন। কুরআনে করিম মে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা নে এক আজীম ও শান সফর কা জিকর ফরমায়া জো আল্লাহ কে দো নবিয়ো নে এক সাথ মিলকর কিয়া, হযরত খিজর আলাইহিস সালাম আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। হযরত খিজর আলাইহিস সালাম নবী হ্যায় ইয়া ওয়ালি হ্যায় ইসমে ইখতিলাফ হ্যায়। বাজ উলামা নে লিখা কে ও নবী হ্যায় আর বাজ নে লিখা কে ও ওয়ালি হ্যায়, আর আকসর কা কওল ইয়াহি হ্যায় কে ও নবী হ্যায়, ও জিন্দা হ্যায় আর কিয়ামত তক জিন্দা রহেঙ্গে, লোগোঁ কি রহনুমাই করতে রহেঙ্গে আর উন্হেঁ সিধা রাস্তা দিখাতে রহিং। উনকা নাম হ্যায় বলিয়া আর উনকি কুনিয়ত আবুল আব্বাস আর খিজর কে নাম সে মশহুর হ্যায়। খিজর কে মানা সবজ আর উসকি ওয়াজহ ইয়ে হ্যায় কি ও জিস জগহ তশরীফ ফরমা হোতে থে ওয়াহাঁ সে সবজা উগাতা থা, ইস ওয়াজহ সে লোগো নে উন্হেঁ খিজর কহনা শুরু কর দিয়া আর ইয়েহি ফির উনকা নাম মশহুর হো গয়া। উনকে ওয়ালিদ কা নাম মালকান, আবি মৌজুদ হ্যায় কিয়ামত তক মৌজুদ রহেঙ্গে, ভটকে হুয়ে লোগোঁ কো সিধা রাস্তা আল্লাহ কে হুকুম সে দিখাতে রহিং। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউন সে মুকাবলা করতে রহে আর ফিরাউন উনকে মুকাবলে মে জাদুগরোঁ কো লায়া আর দিগর হরবে উসনে ইস্তেমাল কিয়ে, বিল আখির আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা নে উসকো দরিয়ায়ে নীল মে গরক কর দিয়া। জব ও দরিয়ায়ে নীল মে গরক হো গয়া আপনি ফৌজ কে সাথ, তব হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কো আর বনি ইসরাঈল কো সুকুন হাসিল হুয়া। জাহির এক দুশমন সামনে মৌজুদ হো, মুসলসল উসকি তরফ সে হামলে হ্যায়, মারকা আরাই হ্যায়, মুশকিলাত হ্যায়, পরেশানিয়াঁ হ্যায়, তো আদমি চ্যান সে নেই বেঠ সকতা। কবি জাদুগরোঁ কো বুলাতা হ্যায়, কবি কুছ করতা হ্যায়, কবি কুছ করতা হ্যায়, কবি বচ্চোঁ কো কতল করাতা হ্যায়, জালিম আর জাবির বাদশাহ। জব ও দরিয়ায়ে নীল মে গরক হো গয়া তো হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কো সুকুন হাসিল হুয়া, আপকি উম্মত বনি ইসরাঈল কো ভি ইতমিনান নসিব হুয়া কি আব দুশমন খতম হো গয়া। রিওয়ায়ত মে আতা হ্যায় কি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কি বারগাহ মে ইয়ে আরজ কি, এ ইলাহুল আলামিন তেরা সবসে মহবুব বান্দা কোন হ্যায়। আল্লাহ নে ফরমায়া, মূসা মেরা মহবুব বান্দা ও হ্যায় জো হর ওয়াক্ত মেরা জিকর করতা আর কিসি লমহে মেরে জিকর কো ফরামোশ নহীঁ করতা, ও মেরা মহবুব বান্দা। মৌলা তেরা ও বান্দা কোন হ্যায় জিসকো তুনে সবসে জ্যাদা ইলম আতা কিয়া। আল্লাহ নে ফরমায়া, মেরা বান্দা জিসকো মানে সবসে জ্যাদা ইলম আতা কিয়া ও হ্যায় জো ইলম সিখতা হ্যায়, ইলম হাসিল হো জানে কে বাদ ভি লোগোঁ সে ইলম সিখতা রহতা হ্যায়, ইস কোশিশ মে কে উসে কোই এসি বাত মিল জায়ে জো উসকে লিয়ে জারিয়ায়ে নিজাত হো জায়ে। মৌলা মুঝসে জ্যাদা ভি কোই ইলম রখনে ওয়ালা হ্যায়? আল্লাহ নে ফরমায়া, হ্যাঁ মূসা তুমসে জ্যাদা ভি ইলম রখনে ওয়ালা মেরা এক বান্দা। আব আপ জানতে হ্যায় কি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কে জলীলুল কদর পেগম্বর আর ও পেগম্বর জিনকো আল্লাহ নে শরফে হাম কলামি বখশা, আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা উনসে কলাম ফরমাতা, কোহে তূর পর তশরীফ লে যাতে থে আর আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা সে হাম কলাম হোতে থে। एक बड़ी फजीलत है, बड़ी सआदत है। आपने सोचा कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला कौन, मौला कौन है वो? हाँ, तुमसे ज्यादा भी इल्म वाला है, वो खिजर है, हजरते खिजर अलैहिस्सलाम के मुतालिक। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक तजस्सुस पैदा हुआ, तलाश उस बंदे की, मुलाकात का शौक पैदा हुआ, मुझसे ज्यादा जो इल्म रखता है मैं उससे मिलूं जाकर, मौला मुझे उसकी निशानी बता दे, तेरा वो बंदा जो मुझसे ज्यादा इल्म रखता है वो कहाँ है, मैं उससे कैसे मिलूंगा, उससे मुलाकात कैसे होगी। अब इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फरकान हमीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा हमारे उस बंदे की निशानी ये है और वो उस मकाम पर मिलेगा कि तुम ऐसा करो कि एक मछली लो, उसको काटो, जिस तरह के खाने के लिए हम तैयार करते हैं ना, और उस मछली को तल लो या भून लो खाने के लिए जैसे हम करते हैं, उसके बाद उसको अपनी टोकरी में डालकर सफर करो, जहां पर दरिया और चट्टान है उस मकाम पर ये भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी, जिस मकाम पर भी ये मछली खुद ब खुद जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहीं हमारा बंदा मिलेगा, ये उसकी निशानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक, उन्होंने एक मछली ले ली, उसको बनाया, उसको भूना, अपनी जंबील में टोकरी में रखा, और एक उनके साथी थे हजरते युशै बिन नून, उनको अपने साथ ले लिया। अब ये दोनों सफर पर रवाना हुए, किस लिए? अल्लाह के महबूब बंदे की तलाश में। यहीं से पता चला कि अल्लाह के बंदों की तलाश में निकलना ये अंबिया की सुन्नत, अल्लाह के बंदों की तलाश में निकलना अंबिया की सुन्नत। सफर शुरू हो गया, चलते रहे, सफर करते रहे, एक मकाम पर थक कर बैठ गए। जब आदमी मुसलसल सफर करते ना, थकान महसूस होती, एक मकाम पर ये बैठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेट गए सोने के लिए, मैं बहुत थक गया हूँ। जब ये सो गए, उसी मकाम पर मछली जिंदा हो गई और उसने छलांग मारी और दरिया में चली, यानी वो मछली जो कट चुकी, जो तली जा चुकी, जिंदा होकर अल्लाह की कुदरत से दरिया में चली गई। जब वो चली गई, हजरत युशै बिन नून जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथी थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ठीक है, जब ये उठेंगे मैं इनको बता दूंगा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ये फरमाया था कि अल्लाह ने फरमाया जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहीं हमारा बंदा मिलेगा। हजरत मूसा अलैहि सलाम सोते रहे, काफी देर के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा चलो भाई सफर आगे चले, सफर पर रवाना हो गए, ये फिर रवाना हो गए। और हजरत युशै बिन नून अलैहिस्सलाम जो थे, जो उनके साथी थे, उनको बताना भूल गए कि मछली समंदर में चली गई जिंदा होकर। अब ये सफर करते रहे करते रहे, काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर पहुंचे, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी, तो हजरत युशै बिन नून से कहा कि लाओ भाई मछली लाओ, हम कुछ खा लें। तब उनको याद आया, उन्होंने कहा मछली तो है ही नहीं, कहाँ गई मछली? जिस मकाम पर आप सोने के लिए लेटे थे वहीं वो मछली जिंदा हुई थी और उसने एक छलांग मारी और समंदर में चली गई। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे वही तो जगह थी, उसी की तो तलाश में हम निकले थे, और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें निशानी यही बताई थी कि जहाँ वो मुर्दा मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहीं हमारा बंदा है। अब क्या करें? कहा चलो वापस। फिर वापस चले, सफर करते 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 उसी मकाम पर पहुंचे जहां मछली जिंदा होकर समंदर में गई थी, वहीं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। देखा कि एक साहब जो हैं सफेद कपड़ा ओढ़े हुए बैठे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर सलाम किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जमीन पर सलाम करने वाले कहां से आ गए, आप कौन है? कहा मैं मूसा हूं। कौन से मूसा? बनी इसराइल वाले? हाँ, बनी इसराइल वाले। दोनों में तारुफ हुआ। उन्होंने कहा मैं खिजर हूं। कहा मैं आप ही की तलाश में मैं आया था। मुकालमा हुआ, आपस में मुसाफा हुआ, मुलाकात हुई, तारुफ हो गया। इन्होंने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है जो तुम्हें नहीं दिया, और तुम्हें वो इल्म दिया है जो मुझे नहीं दिया। कहने का मतलब ये था कि इल्म इसरार यानी इल्म बातिन जो मेरे पास है वो तुम नहीं जानते, और इल्म शरीयत जो तुम्हें दिया है वो मैं नहीं जानता। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और जो तुम्हें इल्म दिया गया है वो मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा नहीं, मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो आपको दिया गया। अब आप देखें, इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म जाहिर और एक इल्म बातिन। इल्म जाहिर क्या है? शरीयत। और इल्म बातिन तरीकत। अब शरई अहकाम जितने भी हैं, जाहिर हैं या नहीं? जाहिर है ना, नमाज, रोज़ा, हज, जक़ात, ये जितनी भी चीज़ें हैं जाहिर हैं, क़ुरान में मौजूद हैं, अहादीस में मौजूद हैं। आप जिस मुफ्ती से जाकर मसला पूछे वो फौरन बता दे। क्यों? ये इल्म जाहिर है। लेकिन एक और इल्म है जिसको इल्म बातिन बल्कि इल्म सीना कहा जाता है, जो एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल होता। वो जाहिर नहीं है, वो हर एक को नहीं पता, वो इल्म सीना है, इल्म बातिन है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने दो इल्म सीखे, दो। एक के लिए मुझे हुक्म हुआ कि लोगों को सिखा दो, और दूसरे के लिए हुक्म यह है कि अगर मैं वो किसी को बता दूं तो मेरा ये हुलकूम काट दिया जाए। बताने का हुक्म नहीं। वही इल्म बातिन, वही इल्म असरार है जो सीना बसीना मुंतकिल होता है और वो किसी को बताया नहीं जाता, वही अल्लाह ताला के राज। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है वो तुम्हें नहीं दिया, और जो तुम्हें दिया है मुझे नहीं दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, जो इल्म आपके पास है मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देखो तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। नहीं, मैं सब्र कर लूंगा। सब्र कर लोगे? कहा हाँ बिल्कुल कर। अच्छा एक बात है, जो काम मैं करूं उसमें मुदाखलत नहीं करना, बोलना नहीं। नहीं ठीक है, मैं खामोश रहूंगा। तुम सब्र नहीं कर सकते? नहीं, मैं सब्र कर लूंगा। तुम बोलोगे? मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब सफर शुरू हो गया। जब ये बात तय हो गई ना, अब सफर शुरू हो गया। अब ये तीन आदमी साथ सफर कर रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत युशै बिन नून, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। और हजरत युशै बिन नून अलैहिस्सलाम का मजार इराक में आज भी मौजूद है। इस फकीर ने उसकी जियारत की वहां पर, इराक में बगदाद में उनका मजार है, हजरत युशै बिन नून अलैहिस्सलाम। अब ये तीनों रवाना हो गए, तो वो जो समंदर था उसके साथ साथ चलना शुरू हो गए। चलते रहे, सफर करते रहे। एक कश्ती नजर आई, इन्होंने इशारा किया, वो कश्ती वाला ले आया कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती थी। तीनों उसमें सवार हो गए। कश्ती का जो मल्लाह था या कप्तान था, अब जाहिर है आप अगर सफर करें तो वो आपसे पैसे लेगा ना, कि भाई मैं आपको इस मकाम से उस मकाम तक ले जा रहा हूं, इतने पैसे होंगे। आप यहां पर किमाड़ी पर जाकर देख लें, कोई फ्री में नहीं बिठाएगा आपको, चाहे वो छोटा स्टीमर हो या कोई बड़ी कश्ती हो, बड़ा जहाज हो, पैसे लेगा। ये तीनों हजरात जब उसमें सवार हुए, उस कप्तान ने इनसे कोई उजरत नहीं ली, किराया नहीं लिया कि भाई मैं आपको इधर से उधर पहुंचा रहा हूं, मुझे इतने पैसे चाहिए, कुछ नहीं कहा, बिल्कुल फ्री बैठे रहे। जब सफर खत्म होने लगा यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने लगे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपना जो थैला था वो खोला, उसमें से कुल्हाड़ा निकाला और निकाल कर जोर से तख्त उस पर मारा, कश्ती पर उसका एक तख्ता निकल गया। उन्होंने उस तख्ते को खींच कर निकाला और समंदर में फेंक। अब अच्छी खासी कश्ती जो थी वो ऐबदार हो गई, पहले उसमें कोई ऐब नहीं था ना, बिल्कुल साफ सुथरी सही सलामत थी। इन्होंने कुल्हाड़े से मार कर एक तख्ता निकाला और उसको उठाकर समंदर में फेंक दिया। अब मूसा अलैहि सलाम ने देखा, इनको फौरन गुस्सा आ गया, अरे आपने ये क्या किया, अच्छी खासी कश्ती को ऐबदार बना दिया, इन्होंने तो हमसे पैसा भी नहीं लिया, इस बेचारे ने हमसे पैसा भी नहीं लिया और आपने अच्छी खासी कश्ती को ऐबदार बना दिया, तख्ता निकाल कर फेंक दिया, क्यों? फरमाया इन्नका लन तस्तती माई सबरा, तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना तुम बोलोगे, अच्छा नहीं नहीं अब नहीं बोलू, नहीं बस तुम्हारा रास्ता अलग मेरा, नहीं नहीं मैं अब नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था जो मैं करता रहूं खामोश देखते रहो, बोलना नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है खामोश हो। अब समझ में नहीं आया कि क्यों किया, उन्होंने तो हमारे साथ एहसान किया, इन्होंने तख्ता निकाल के फेंक दिया। खैर फिर आगे चले, देखा कि एक बच्चा जो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा, हजरत खिजर अलैहि सलाम ने उसे देखा, उस बच्चे को पकड़ा, उसका गला दबा दिया, गया जाहिर गला दबा दिया, मार दिया उसको जोर से पटका, वहीं खत्म हो गया। अब इन्होंने देखा ये क्या किया आपने, एक जान को बगैर किसी वजह के आपने कत्ल कर दिया, इसने क्या किया था, इसने किसको मारा था जिसके बदले आपने इसको मार दिया, आपने तो बहुत बुरा काम किया। मैंने कहा था तुम बोलोगे बीच में, अच्छा नहीं अब नहीं बोलूंगा, कहा नहीं, मैंने कहा था तुम सबर नहीं कर सकोगे, इन नकल अंत सती माई सबरा, मेरे साथ तुम सबर नहीं कर सकते, मैं जो कुछ करूं तुम्हें बोलना नहीं है, देखते रहो जबान खामोश रहे, बोलना नहीं है। अब जाहिर तजस्सुस पैदा होता है ना, हमारे सामने भी अगर कोई किसी को मार दे तो गुस्सा आएगा ना, भैया क्यों कर दिया, इस बेचारे ने क्या किया था। लेकिन अब मसला ये है कि बोलना नहीं है, जो मैं करूं करते रहने, शर्त यही थी सफर की, अब पहले ही कह दिया था तुम सबर नहीं कर सकोगे, इन्होंने कहा नहीं मैं सबर करूंगा। अब दो वाकयात हो गए, फिर खामोश, फिर सफर शुरू हो गया, चलते रहे चलते रहे। अब ये पहुंचे एक गांव में, और जो तीसरा वाकया है वो हम आपको गुज़िश्ता नशिस्तों में सुना भी चुके हैं। वहां पहुंचे, गांव वालों ने इनकी कोई मेहमान नवाजी नहीं की, जैसे कोई मेहमान आता है ना पूछे आप इतनी दूर से आए हैं आप कुछ खा पी लें कुछ कर लें, कुछ नहीं, बेरुखी बद अखलाकी, पूछा ही नहीं आप कौन है कहां से आए क्या हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम को बड़ा गुस्सा है, अरे इन लोगों को कम से कम कुछ पूछना तो चाहिए। खैर जब ये वहां से निकलने लगे तो गांव में एक दीवार थी जो गिरने लगी, टेढ़ी हो गई बिल्कुल, करीब था कि कुछ दिन के बाद वो गिर जाए। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने इसमें आजम पढ़कर उस दीवार को दुरुस्त कर दी, उसको हाथ लगाया उसको दुरुस्त कर दी। अब जैसे ही दुरुस्त किया, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फौरन, आपने क्यों ऐसा किया, इन्होंने तो हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इन्होंने तो बदअखलाकी का मुजाहिरा किया, आपने ये खामखा दीवार को दुरुस्त कर दिया, अरे इस दीवार को दुरुस्त करने के पैसे ले लेते, लौशेता लतखस्ता अलैही अजरा, अगर आप चाहते तो इसी के पैसे ले लेते। उन्होंने कहा बस अब बात खत्म हो गई, तुम फिर बोले, अब तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। इन्होंने कहा नहीं नहीं अब नहीं बोलूंगा, कहा नहीं अब तो तीन दफा हो चुका, हर दफा तुम यही कहते होंगे, नहीं मैं अब कैसे मैं सब करूंगा, इन नकल अंत सती माइया सबरा, तुम मेरे साथ हरगिज सबर नहीं कर सकते, मैंने कहा था जो कुछ मैं करता रहूं तुम देखते रहो, बोलना नहीं है, हर मामले में तुम बोलते हो, लिहाजा बस अब मामला, अब जब फैसला हो चुका। उन्होंने कहा अच्छा चले, अब मेरी गलती मैं बोलता रहा, अब आप नहीं मानते, चले मुझे बता तो दे कि कम से कम किया क्यों, ये जो तीन वाकयात हुए ये तीनों आपने किए क्यों। अब सुने उसकी तफसील, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, पहली बात तो ये कि ये तीनों चीजें जो मैंने की अल्लाह के हुक्म से की, मैंने खुद नहीं की, जो रब का हुक्म था मैंने वैसे किया। पहली चीज, हम जिस कश्ती में सवार हुए उस कश्ती के कप्तान ने, मल्लाह ने हमसे पैसे नहीं लिए, किराया नहीं लिया, और मैंने कुल्हाड़ी मार के वो तख्ता निकाल कर समंदर में फेंक दिया तो मैं गुस्सा आ गया। वजह क्या थी? वजह ये थी, बेशक उन्होंने तो हमारे साथ एहसान किया, पैसे नहीं दिए, कश्ती के समंदर के दूसरे किनारे पर एक जालिम जाबिर बादशाह रहता है, और उसका तरीका यह था कि जो कश्ती बिल्कुल सही सलामत होती थी उसे पकड़ लेता, अपने कब्जे में कर लेता, और जो ऐबदार होती थी उसे छोड़ देता। मैंने ये देखा कि ये लोग गरीब हैं, इनका गुजारा इसी कश्ती पर है, यानी लोगों को इधर से उधर, उधर से उधर, उसी में जो पैसा मिलता है अपना गुजारा करते हैं। अब जब ये कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंचेगी और वो जालिम जाबिर बादशाह देखेगा वो फौरन पकड़ लेगा, तो इनका एक वाहिद सहारा, जरिया माश, वो भी खत्म हो जाएगा। जाहिर है बादशाह से तो लड़ नहीं सकते ये लोग, वो छीन लेगा। इसलिए मैंने उस कश्ती का तख्ता निकाल कर समंदर में फेंक दिया, उसे ऐबदार बना दिया। जब कश्ती वहां पहुंचेगी बादशाह देखेगा वो कहेगा ये ऐबदार है, छोड़ देगा, इनका सिलसिला चलता रहेगा। अब बात समझ में आई? उन्होंने कहा ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, मैंने खुद थोड़ी किया। हाँ, मुझे इल्म हो गया, अल्लाह की तरफ से मुझे ये इल्म दिया गया, मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से मैंने वो तख्ता निकाल कर फेंक दिया, कश्ती को ऐबदार बना दिया। अब होगा ये कि जब कश्ती वहां पहुंचेगी बादशाह जो कश्तियों को पकड़ रहा है वो देखेगा ये ऐबदार है, छोड़ देगा, इन गरीबों का सिलसिला उसी तरह चलता रहे। मूसा अलैहि सलाम ने कहा हाँ ये बात तो मेरे समझ में आ गई। और दूसरी बात, वो जो उस बच्चे को पकड़ कर गला दबा कर उसको पटका और वो ख़त्म हो गया, फरमाया हाँ सुनो, उसको जो मैंने मारा अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, और उसको मारने में हिकमत ये थी, वो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था, एक ही वाहिद, और वो पैदाइशी काफिर था, यानी उसके आगे मुसलमान होने की कोई उम्मीद नहीं थी, और उसके वालदैन सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान थे, और वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मुझे अंदेशा ये हुआ कि कहीं इसकी मोहब्बत में ये अपना ईमान ज़ाया ना कर दें, जो वो कहेगा वो करेंगे, और वो तो अजली तौर पर काफिर है, पैदाइशी काफिर है शुरू से ही, और काफिर ही रहेगा बड़े होने तक, कहीं इसकी मोहब्बत में ये अपना ईमान जाया ना कर दें, गुमराह ना हो जाएं, इस वजह से मैंने उसके गला दबाया पटखा और वो मर गए। अब क्या होगा? अब वालदैन उसकी मौत पर सब्र करेंगे, अल्लाह उनको अजर देगा, और उस अजर के सिले में और इस चीज के सिले में उनको एक बेटी अता करेगा, उनके एक बेटी की पैदाइश होगी, फिर उस लड़की का निकाह एक नबी से होगा, और उसके पेट से अल्लाह के नबी पैदा हों जो हिदायत देंगे, उनकी उम्मत होगी और वो हजारों लाखों को हिदायत देंगे, ये वजह है उसको मारने की। समझ में आ गई? उन्होंने कहा आप समझ में आ गई। और तीसरी बात, वो जो दीवार गिर रही थी आपने दुरुस्त कर दी? हाँ, वो भी सुनो, वो मैंने खुद नहीं अल्लाह के हुक्म से की, और वो ये था कि उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दफन था, बच्चे छोटे हैं, कमसिन हैं, अभी दीवार गिरने वाली थी, अगर वो गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, जो गांव वाले थे लूट कर ले जाते, जाहिर है वो कमसिन बच्चे यतीम जो अभी बिल्कुल कमसिन है, छोटे हैं, वो क्या करते, खजाना ख़त्म हो जाता, जब तक वो बड़े होते एक ढेला भी उनके हाथ नहीं लगता। मैंने अल्लाह के हुक्म से दीवार को दुरुस्त कर दिया, दीवार के नीचे जो खजाना है महफूज रहेगा, बच्चे परवान चढ़ेंगे, परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद दीवार गिर जाएगी, खजाना जाहिर हो जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा। और मैंने किया इसीलिए, वकाना अबू हुमा सालेहा, कि उनका बाप नेक था, बाप की नेकी का सिला औलाद को मिल रहा। यहीं से पता चला कि अगर वालदैन नेक हों, उनकी नेकी का सिला औलाद को जरूर मिलता है, और अगर औलाद नेक हो, वालदैन कब्र में पहुंच जाएं, वहां उनको सवाब मिलता। इसलिए कि वालदैन की तरबियत की वजह से वो नमाज पढ़ रहा है, बाप मर चुका कब्र में पहुंच चुका, बेटा दुनिया में नमाज पढ़ रहा है, कब्र में बाप को सवाब मिल रहा। यह अल्लाह तबारक व तआला की शान है, ये उसने हम गुनाहगारों को बख्शने के तरीके बनाए हैं कि बाप नेक है तो सिला औलाद को मिल रहा है, औलाद नेक है तो सिला वालदैन को मिल रहा, एक दूसरे की वजह से बख्शिश का सामान हो रहा, ये भी बख्शा गया, वो भी बख्शा गया, सारी उम्मत बख्शी। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है और सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस आयत के तहत उलमाए किराम ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा कि वकाना अबू हुमा सालेहा, उससे मुराद उनका वो बाप नहीं था जिसके सुल्ब से वो पैदा हुए, वो नहीं मुराद है, उनकी कोई सातवीं आठवीं नस्ल में कोई नेक गुजर चुका था, उसकी नेकी नीचे तक चली आ रही थी, उसका सिला मिल रहा। गौर करो अल्लाह का करम कितना है कि पूरी नस्ल में कोई एक नेक है, उसकी नेकी चली आ रही और उसका सिला मिल रहा, तो जिसका हकीकी बाप नेक हो उसको कितना सिला मिलेगा, उस पर कितनी रहमतें होंगी और अल्लाह कितनी बरकतें नाजिल करे। इसीलिए कहते हैं नेकी कभी जाया नहीं होती, छोटी से छोटी नेकी, अदना से अदना नेकी आपको मिले आप कर लीजिए, जाया नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला एक छोटी सी नेकी का सिला भी मिलता, छोटी सी नेकी का सिला भी देता। हमसे तो मामूली बात है, छोड़ दो कोई बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे काम करते रहो, यही राई का पहाड़ बन जाएगा, यही जर्रे जमा होंगे तो पहाड़ बन जाएगा, छोटी से छोटी नेकी मिले कर लीजिए, यह अल्लाह तबारक व ताला का करम है। इस सफर मजमाउल बहरैन से बहुत सी चीज़ें हमें पता चली। पहली चीज़, अल्लाह के बंदों की तलाश में निकलना ये अंबिया की सुन्नत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला ना, मुझसे ज़्यादा कोई इल्म रखता है, मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इल्म के मामले में कोई भी कभी भी हर्फे आखिर नहीं हो सकता, कोई कितना ही इल्म हासिल कर ले दीन का या दुनिया का, ये नहीं कह सकता कि अब मैं मुकम्मल हो गया, मैंने सारे उलूम हासिल कर लिए, कभी नहीं कह सकता। अल्लाह ने एक के बाद एक इल्म वाला रखा है और एक के ऊपर दूसरा इल्म वाला रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं, अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरा एक बंदा ऐसा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता, और अगर कोई ये कहे कि मैंने तमाम जाहिरी उलूम हासिल कर लिए, तो फिर उससे कहो कि बातनी उलूम तो बाकी हैं अभी, वो कहां से हासिल करेगा, जाहिरी उलूम तो हासिल कर लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उलूम का एक समंदर, क्या एक बहरे बेकरा, कितने आलम हैं, उनमें कितनी मखलूकात हैं, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम दुनिया, आलम बरजख, आलम आखिरत, आलम अरवा, कितने आलम हैं, 18,000 आलम पैदा किए, उनमें मखलूकात पैदा की, उनके उलूम पैदा किए, हम एक आलम के ही उलूम हासिल नहीं कर पा रहे, दूसरे तक क्या पहुंचे। इसलिए आलिम वो है जो अपने आप को तालिब इल्म समझे, ये बड़े नुक्ते की बात है, आलिम वो है जो अपने आप को तालिब इल्म समझे, और जब आलिम अपने आप को आलिम समझने लगे वो जाहिल हो जाएगा, वो जाहिल हो जाएगा। क्यों? इल्म की कोई हद नहीं, इल्म का कोई ठिकाना नहीं है, कोई सारी उम्र भी इल्म हासिल करता रहे फिर भी समझो उसने कुछ हासिल नहीं। सिर्फ एक जात ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज का इल्म अता फरमा दिया, और वो जात पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है अल्लामा का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। वकान फदलुल्लाह अलैका अजीमा, और ये आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है, जो कुछ नहीं जानते थे हमने सब सिखा दिया। अब देखें ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं इल्मे असरार जो हैं, जो पोशीदा हैं, वो कोई नहीं जानता। आप सुन चुके हैं मौलाना रूम का वाकया, बैठे हैं मसनवी लिख रहे हैं, दरसो तदरीस भी कर रहे हैं, हदीसें भी पढ़ा रहे हैं, उलूम व फ़नून भी पढ़ा रहे हैं। हजरत शम्स तबरेज पहुंच गए, मौलाना क्या कर रहे हो? इन्होंने देखा, अरे ये फटे पुराने कपड़े पहना हुआ, इसके बाल गर्द से अटे हुए, इसकी दाढ़ी पर गर्दो गुबार, ये क्या समझेगा, ये क्या है? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने पूछा, ये क्या है? मौलाना क्या कर रहे? मसनवी लिख रहे। मौलाना रूम मसनवी लिख रहे हैं, और अपने जमाने के बड़े जय्यद आलिम, बड़े बड़े उलमा ने उनकी शागिर्दी की कबूल करना अपने लिए फखर समझा, इतने बड़े आलिम। इन्होंने देखा, ये मुझसे क्या पूछ रहा है? इन्होंने कहा, ये वो चीज है जो तुम नहीं जानते। फारसी में, उस जमाने में फारसी जबान थी, उनका ई चीज, ये क्या है? उन्होंने कहा, शुमा नमीदानी, तुम नहीं जानते, यानी जो मैं लिख रहा हूं तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मसनवी उठाई, पानी में फेंक दी, और किताब भी कोई प्रिंटेड नहीं थी, कलम से लिख रहे थे। उस जमाने में कोई ये परेस वगैरह नहीं थे, वो सियाही में डुबो कर फिर लिखा जाता था, फिर डुबो या फिर लिखा, कितनी मेहनत, और इतनी मेहनत से उन्होंने कितनी किताबें लिखी। इन्होंने एक हाथ से उठा के दरिया में, मौलाना को गुस्सा आ गया, बेचैन, अरे ये क्या कर दिया, मेरी मेहनत बेकार कर दी, बस यही इन था तुम्हारा, दरिया में गया। दोबारा हाथ डाला, अब बिल्कुल खुश किताबें उठाकर दे, पानी में से किताब निकलेगी, उसका क्या असर होगा, कागज तो वैसे ही खत्म हो जाएगा और सियाही खत्म, फैल जाएगी सियाही। पानी में से निकाला शम्स तबरेज ने, और उसके अंदर से खाक झाड़कर मौलाना को दे दी। मौलाना हैरान है, ये क्या है? इन्होंने कहा, ये वो है जो तुम नहीं जानते। पहले उन्होंने कहा था ना कि ये वो है जो तुम नहीं जानते, इन्होंने कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते। शुमान में शुमा नमी दानी, ये वो है जो तुम नहीं जानते। मौलाना हैरान हो गए, अपनी पगड़ी अपना मामा उतार कर फेंक दिया, और शम्स तबरेज आगे जा रहे हैं, नंगे पैर नंगे सर, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम एक मर्द कलंदर के पीछे जा रहा। वो समझ गए कि मैंने जो कुछ हासिल किया तो कुछ भी नहीं है, असल तो ये है। क्या मतलब, पहले इल्मे जाहिर के सबसे बड़े आलिम थे, और इल्मे बातिन के आलिम को देख लिया, उसके पीछे पीछे रवाना हो, उनकी गुलामी इख्तियार कर ली, एक झलक दिखा दी, बस एक झलक दिखा दी। तुम क्या ये लेकर बैठे हो, तुम नहीं जानते कि हाँ ये वो है जो तुम नहीं जानते, एक झलक दिखा दी। मौलाना सब कुछ छोड़कर बैठ गए। लोगों ने कहा, इस दीवाने ने, मजजूब ने हमारे उस्ताद को गुमराह कर दिया, देखो हमें पढ़ाते थे वो, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अरे जब जलवा नजर आ गया तो फिर वो इस चीज को क्या देखें, जब बातनी आंख खुल गई तो ये जाहिरी चीजें क्या देखें। जब उन्होंने ये देख लिया, पुकार उठे, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलाना रूम ने फरमाया, मौलवी मौलवी नहीं बन सकता जब तक शम्स तबरेज का गुलाम ना हो जाए। खुद कह दिया, देख लिए झलक, पता चल गया कि कोई इल्म में हर्फ आखिर नहीं, सब तालिबे इल्म हैं। कितना बड़ा आलिम हो जाए वो भी तालिबे इल्म, सारी उम्र इल्म हासिल करते रहो फिर भी इल्म की हद नहीं है। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझसे बड़ा भी आलिम? हाँ मूसा, तुमसे बड़ा भी आलिम, तुमसे बड़ा भी आलिम है। मौला मैं मिलना चाहता हूँ, जहाँ वो मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाए वहीं हमारा बंदा। पता चल गया कि जहाँ जुल्मत रोशनी से बदल जाए, जुल्मत नूर से बदल जाए, अंधेरा रोशनी से बदल जाए, मौत जिंदगी से बदल जाए, वहीं अल्लाह का बंदा। अल्लाह के बंदे की शान यही है, उसका मकाम ही वही होता है कि वहां जहालत इल्म से बदल जाती है, जुल्मत रोशनी से बदल जाती है, अंधेरा नूर से बदल जाता है, बीमारी सेहत से बदल जाती है, मौत जिंदगी से बदल जाती है। यही अल्लाह के बंदों की शान है, और उनके मकामात पर यही रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं कि अल्लाह के हुक्म से लोग हिदायत हासिल करते हैं और सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। दूसरी चीज ये मालूम हुई कि कुछ असरार और रमूज ऐसे हैं कि जिनमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ती, बताया नहीं जाता। یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں. اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے سب جانتے ہیں لیکن بتانے کا حکم نہیں. جتنا بتانے کا حکم ہوا اتنا بتا دیا اور جو حکم نہیں ہوا نہیں بتایا. حضرت خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا, میرے ساتھ رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, بولنا نہیں ہے, جو کچھ میں کرتا رہوں تم دیکھتے رہو, بولنا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا, یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا, ظاہر ایک ہی سامنے ہو رہی ہے, آدمی نہیں سمجھ سکتا. ان نقل انتستی مائیا صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ علم سینہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا بزرگان دین اولیاء کاملین تک پہنچ گیا. بزرگان دین اولیاء کاملین تک پہنچ گئے, یہی تو روحانیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ قربان. فرمایا کیا ہوا؟ سرکار آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ بادام لے آؤ وہ کھا لینا, یا کوئی کشمش لے آنا, یا فلاں چیز لے آنا. بھائی دماغ کو تیز کرنے کے لیے یہی ہے نا, کوئی دوا نہیں بتائی. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. کہتے میں نے اپنی چادر پھیلائی, حضور نے ایسے اشارہ کیا کوئی چیز ڈال دی, کچھ نظر نہیں آیا, اشارہ کیا کوئی چیز چادر میں ڈال دی. ابو ہریرہ چادر کو اپنے سینے سے لگا لو, انہوں نے اٹھایا سینے سے لگا لیا, اور فرماتے اس کے بعد جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد رہتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوا, حضور نے کیا چیز دی, چادر میں ڈالا کیا, ایسے کر کے جو ڈالا کیا ڈالا, ابو ہریرہ نے کیا سینے سے لگایا, یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے, اور کسی کو نہیں. یہی علم اسرار ہے, یہی روحانیت ہے جو دیکھ رہا ہے لیکن آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ ہے کیا. یہی سلسلہ بزرگان دین اولیاء کاملین سے چلا رہا. تو علماء عالم شریعت ہیں اور صوفیہ عالم طریقت ہیں. وہ ظاہر کا علم رکھتے ہیں, یہ باطن کا علم رکھتے ہیں. وہ چہروں کو دیکھتے ہیں, یہ دلوں کو دیکھتے ہیں. علماء ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں, صوفیہ باطن کی اصلاح کرتے ہیں. یہ تمہارے چہرے کو, تمہارے لباس کو, تمہاری زبان کو دیکھتے ہیں, اور اولیاء اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں, تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. یہ ظاہر ہے, وہ باطن جس کا تعلق جس سے ہے وہ اسی طرح کر رہا ہے. جس کا تعلق ظاہر سے ہے وہ ظاہر پر فتویٰ لگائے گا, اور جس کا تعلق باطن سے ہے وہ باطن پر. اس لیے بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو صاف کر کے آؤ, اپنی نیتوں کو صاف کر کے آؤ, اور خلوص اور محبت لے کر آؤ تو سب کچھ لے کر جاؤ, اور اگر خلوص اور محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں. اس سفر مجمع البحرین سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم والے پر دوسرا علم والا رکھا ہے. فوق کل ذی علم علیم, ایک کے اوپر ایک, حرف آخر کوئی نہیں کہ میں سب سے بڑا عالم, ایک کے اوپر ایک رکھا, اور یہ بتا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے, اور علم ظاہر ہے اس کے بعد علم باطن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی, حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا, اس کے بعد دونوں کے راستے جدا جدا ہو گئے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں, بزرگان دین اولیاء کاملین سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سمنانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے ذکر کی تعلیم دی, اور حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد, جب مخدوم سمنانی وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے فرمایا, فرزند اشرف جس وقت تم شہر سمنان سے چلے تھے اس وقت سے آج تک حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ مجھے بشارت دی ہے کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے, سارے مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں, لیکن میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لا رہا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام کا کام یہی ہے کہ وہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو بشارتیں دیتے ہیں, ان کی مدد فرماتے ہیں, اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں, اور سالکین کی رہنمائی فرماتے ہیں، عارفین کی رہنمائی فرماتے ہیں، کاملین کی رہنمائی فرماتے ہیں، عاشقین کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں ان سب کی اللہ کے حکم سے رہنمائی فرماتے، ان کو بشارتیں دیتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کام ہے، وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں. تو آج کی اس نشست میں ہم نے سفر مجمع البحرین کو بیان کیا. آپ اس کو یاد رکھیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، یہ سب سچے واقعات. اب آپ ایک کتاب اٹھا کر بیٹھ جائیں، ایک بادشاہ تھا فلاں جگہ گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا ساری جھوٹی کہانی. لیکن قرآن جو قصے بیان کر رہا ہے، ایک ایک لفظ درست ہے. جتنے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں وہ سب سچے ہیں، وہ سب حق ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ان کو آگے پہنچانا چاہیے. جو چیزیں آپ سنیں آپ گھر جا کر اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھیں. سچے واقعات سنائیے تاکہ سچی چیز ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. بچے کہانیاں سننے کے شوقین ہیں نا، آپ ان کو سناتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو قرآن کے سچے واقعات سنائیں تاکہ سچی چیزیں ابھی سے ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں. یہ ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گی وہ خود بھی سچے ہوں گے اور آگے سچے کام کریں. آئیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے اور اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.